यरमिया अध्याय 49 में वे आरंभ में अमोनियों के विषय भविष्यवाणी देता है। ये लोग मोआब के उत्तर में और यर्दन के पूर्व ऊपरी क्षेत्र में वास करते थे, जो गलील सागर का पूर्वी क्षेत्र तथा गोलान ऊंचाई था। यरमिया अध्याय 49 पद 1। अमोनियों के विषय यहोवा यूं कहता है, क्या इसराइल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ और उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? आपको ध्यान होगा, जब इसराइल के वंशज मिस्र से निकलकर आए थे और 40 वर्ष जंगल में भटकने के बाद वे प्रतिज्ञा के देश में उत्तर की ओर प्रवेश करके अधिकार करने लगे थे, तब उन्होंने यर्दन के पूर्व में गोलान ऊंचाइयों पर तथा उस क्षेत्र पर अधिकार किया था जो बाद में अमोन कहलाया। तदोपरांत यहूशु ने उन्हें संगठित कर प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार करना आरंभ किया था। उस समय गाद, रूबिन और मनशे का आधा कुल यहूशु के पास आकर बोला, देख, ये मावेशियों का स्थान है और हम चरवाहे हैं। हम यर्दन पार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम यहां खुश हैं। अतः तू हमें यही वास करने दे, क्योंकि ये मावेशियों के लिए उत्तम स्थान है। पहले तो यहोशू नाराज हुआ, क्योंकि उसे 40 वर्ष पूर्व की घटना स्मरण हो आई कि इन लोगों ने वहां के भीमकाय लोगों और दीवारों वाले नगरों से भय खाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनको प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश पाने में देरी हुई। और अब यदि वे ऐसा करते हैं तो शायद वे कभी भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि ये लोग इस प्रकार टूटने लगे तो अन्य कुल भी निरुत्साह हो जाएंगे। इस पर उन्होंने प्रण किया कि वे अपने परिवारों को वहां बसाकर सबके साथ युद्ध में शामिल होंगे और पूरा देश जीतेंगे। जब प्रतिज्ञा का पूरा देश हमारे अधीन हो जाएगा, तब हम आकर यहां बस जाएंगे। इस प्रकार उन्हें अमोरियों का पूरा क्षेत्र दे दिया गया था। इतिहास के उत्तर काल में हम देखने को मिलता है कि प्रतिज्ञा के देश में उनका नहीं आना हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि अमोनियों ने उन्हें पराजित करके उनके नगरों पर अधिकार कर लिया था। यहां यरमिया इसी घटना का उल्लेख कर कहता है, क्या इसराइल के पुत्र नहीं हैं? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ और उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई? यरमिया अध्याय 49 पद 2। यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अमोनियों के रबा नाम नगर के विरुद्ध की ललकार सुनवाऊंगा। आज अमान जो जॉर्डन देश में है, वही उस युग का रबा था। इससे आपको भूगोलिक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। यरमिया अध्याय 49 पद 2 में आगे लिखा है, और वो उजड़कर खंडर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएगी। तब जिन लोगों ने इसराइलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इसराइली अपना लेंगे, यहोवा की यही वचन है, और इसराइल को वो क्षेत्र फिर से मिल जाएगा। यरमिया अध्याय 49 पद 3 से लेकर 6 तक। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ये नगर नाश हो गया। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंदवाई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेषकर अपने बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों ये कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, देख मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूं और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर धकेल दिए जाएंगे और जब वे मारे मारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठा ना करेगा, परंतु उसके बाद मैं अमोनियों को बंदवाई से लौटा लाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। अब वो मोआब के दक्षिण की ओर हेशबोन एदोम के लिए भविष्यवाणी करता है। संभवतः उस समय पेत्रा नगर चट्टानी क्षेत्र यही स्थित था। एदोम एसाव के वंशज थे। यरमिया अध्याय 49 पद 7। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? तेमान एदोम का एक नगर था। ये एलिपस का संदर्भ है। एलिपस आयुब को संतावना देने आया था। तेमान वासी एलिपस। एलिपस संसार के ज्ञान से पूर्ण आयुब को संतावना देने आया था। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? आयुब ने उसे स्पष्ट कह दिया। आयुब अध्याय 12 पद 2। जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। यरमिया अध्याय 49 पद 7 और 8। क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ। आज के सऊदी अरब का अधिकांश भाग ही वो क्षेत्र है जो एदोम का दादान नगर तथा शीबा का क्षेत्र था। मेरी रुचि का विषय तो ये इसलिए है कि भविष्यवाणी को आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमें एहेस्केल के द्वारा संदेश दिया है कि इसराइल राष्ट्र का पुनरुद्धार होगा और इस समय वो रूस के नेताओं के मन में बुरा विचार डालेगा और वे विशाल सेना लेकर इसराइल पर आक्रमण करेंगे। वो रूस के मित्र राष्ट्रों के नाम भी देता है, लीबिया, एथियोपिया, ईरान, इराक, बाल्कन राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के राष्ट्र। वहां लिखा है कि जब रूस आक्रमण करेगा तब, एहेस्केल अध्याय 38 पद 13, शबा और दादान के लोग और तर्शिश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? ये उचित नहीं है, ये न्याय सम्मत नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका सऊदी अरब को युद्ध विमान बेचने के विषय में वाद विवाद कर रहा है। इसराइल इस सौदे के विरुद्ध अमेरिका पर जोर डाल रहा है, क्योंकि इन विमानों में अति संवेदनशील साधन लगे हैं जिनके द्वारा सऊदी अरब इसराइल के रेडियो संदेश को पकड़कर उनके समस्त गुप्त भेदों को जान लेगा। मैं अमेरिका की मध्य एशिया नीतियों के प्रति चिंतित रहता हूं, परंतु भविष्यवाणियों के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा समय आने पर सऊदी अरब रूस के आक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाएगा। उनकी चिंता का कारण होगा कि रूस का लक्ष्य तेल का भंडार होगा और सऊदी अरब के पास तेल के विशाल भंडार है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस संघर्ष में सऊदी अरब इसराइल का विरोधी नहीं होगा, अतः अमेरिका द्वारा विभिन्न राष्ट्रों को हथियार उपलब्ध कराने के पक्ष में मैं नहीं होता हूं, परंतु यदि अमेरिका सऊदी अरब को हथियार देता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार सऊदी अरब उस युद्ध में इसराइल का पक्ष लेगा। मेरे पास पत्रों के पैकेट का ढेर है जिसमें अमेरिका की इस नीति के विरुद्ध आवाज उठाने का आग्रह किया गया है। परंतु मैं बाइबल पढ़कर अमेरिका से अधिक जानकारी प्राप्त कर चुका हूं, अतः मैं निश्चिंत हूं। हे दादान के वासियों, यहां छिपकर बसो। यरमिया अध्याय 49 पद 8 से लेकर 13 तक। वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख ना छोड़ जाते? और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर ना ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उघारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहां तक कि वो छिप ना सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नाश हो गए हैं और उसका अंत हो गया। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो जो इसके योग्य ना थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहर कर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहर कर ना बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैंने अपनी सौगंध खाई है। जब परमेश्वर अपने कहे की पुष्टि करना चाहता है तब वो अपनी सौगंध खाता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई है ही नहीं, अतः वो किसकी सौगंध खाए? अब वो क्या करे, उसे अपने ही सौगंध खाना है। अपने आप से ऊपर वो किसकी सौगंध खाए? इसलिए वो कहता है, मैंने अपनी सौगंध खाई है। ये कथन उसकी वाचा को 100% पक्का कर देता है। यरमिया अध्याय 49 पद 13 में आगे लिखा है कि बोसरा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। उनकी आज भी यही स्थिति है। आपको इसकी जीवित गवाही मिलेगी। आप वहां केवल खंडर देखेंगे, परंतु वहां एक भी नगर देखने को नहीं मिलेंगे। यरमिया अध्याय 49 पद 14 से लेकर 16 तक। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में ये कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है, हे चट्टान की दरारों में बसे हुए। ये पेत्रा चट्टान नगरी का संदर्भ है, हे चट्टान के दरारों में बसे हुए। यरमिया अध्याय 49 पद 16 से लेकर 22 तक। हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, एदोम यहां तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वो चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का ये वचन है कि जैसी सदोम और उमोरा और उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसे ही उसकी दशा होगी। वहां ना कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वो सिम की नाई यर्दन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उसको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वो चरवाहा कहां है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसे कल्पना की है। निश्चय वो भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वो चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वो उकाब की नाई निकलकर उड़ आएगा और बोसरा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूर वीरों का मन जचा स्त्री का सा हो जाएगा। परमेश्वर एदोम पर आने वाले अपने दंड की घोषणा कर रहा है। अब वह उत्तर में दमिश्क की ओर मुड़ता है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। दमिश्क नेबुकदनेज़र के अधीन हो चुका था। यरमिया अध्याय 49 पद 23 से लेकर 27 तक। दमिश्क के विषय हमात और अरपाद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है। वे गल गए हैं, समुद्र पर चिंता है, वो शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है, जचा किसी पीड़े उसे उठी है। हाय वो नगर, वो प्रशंसा योग्य पुरी, जो मेरे हर्ष का कारण है, वो छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा, और मैं दमिश्क की शहरपना में आग लगाऊंगा जिससे बेन-हदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। जैसे फिरौन मिस्र के राजा की उपाधि थी, उसी प्रकार बेन-हदद अशूरों के शासकों की उपाधि है। इसके बाद यहोवा केदार और हासोर के राज्यों के लिए कहता है। हासोर ऊपरी गलील का क्षेत्र ना होकर खाना बदोश समूह था। यरमिया अध्याय 49 पद 28 और 29। केदार और हासोर के राज्यों के विषय, जिन्हें बाबुल के राजा नेबुकदनेज़र ने मार लिया। यहोवा यूं कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूर्वियों को नाश करो, वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे, वे उनके तंबुओं के पर्दे ले जाएंगे। वे खानाबदोश बंजारा लोग थे, वे बद्दू किस्म के लोग थे। यरमिया अध्याय 49 पद 29 से लेकर 33 तक। और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की ये वाणी है, हे हासोर के रहने वाले भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बाबुल के राजा नेबुकदनेज़र ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की ये वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यूं ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुड़ाने वाले को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है। हासोर गीदड़ों का वास स्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां ना कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। यहां तक कि इन केदार और हासोर के खानाबदोश समाज के लोग नेबुकदनेज़र से बच नहीं पाएंगे। इस गद के अंत में वो एलाम के विषय भविष्यवाणी देता है। यरमिया अध्याय 49 पद 34। यहूदा के राजा सिदकया के राज्य के आरंभ में यहोवा का ये वचन यरमिया भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। एलाम वो क्षेत्र है जहां ईरान और इराक का युद्ध स्थल था। वे इस जल डमरू पर युद्ध करते थे। एलाम का क्षेत्र ईरान की सीमा में था। यहोवा का यह वचन यरमिया भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। यरमिया अध्याय 49 पद 35 से लेकर 39 तक। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की ये वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यही वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंदवाई से लौटा ले आऊंगा। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि बाइबल की टीका के लिए इन भविष्यवाणियों में विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, अतः हमें इस पर ध्यान देना आवश्यक है। इन भविष्यवाणियों का मुख्य उद्देश्य ये दर्शाना है कि परमेश्वर दंड देता है और उसने जिन जिन राष्ट्रों के लिए जो जो कहा वो पूरा हुआ। क्योंकि ये भविष्यवाणियां संग्रह में सम्मिलित है, इसलिए चाहे ये हमें रोचक प्रतीत हो या ना हो, इन्हें पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। ये भविष्यवाणियां इस प्रकार धर्मशास्त्र की अद्भुत भविष्यवाणी के पक्ष को उजागर करती है कि परमेश्वर किसी घटना के होने से पूर्व उसकी भविष्यवाणी कर देता है कि जब वो पूरी हो तो आप विश्वास करें। भविष्यवाणी वास्तव में विश्वास के आधार हेतु प्रदान की गई है। मेरे विचार में धर्मशास्त्र का दृढ़ पक्ष समर्थन भविष्यवाणियों की पूर्ति ही है। आज जब हम संसार को देखते हैं और बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के कामों की पूर्णता यहां विद्यमान है और ये हमारे विश्वास का निर्माण है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना अध्याय 13 पद 19, मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप रेखा प्रदान कर दी है कि इन दिनों में क्या होगा और हम उसे यथावत देखते भी हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे देखकर विश्वास करेगा, परंतु यदि आप मूर्ख हैं तो विश्वास नहीं करेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तो बाध्य हो ही जाएगा कि विश्वास करे कि ये एक संयोग नहीं अपितु सत्य है। आज उपग्रह, टीवी, कंप्यूटर, आधुनिक हथियार आदि सब इन बातों को पूरा होने के प्रमाण है। परमेश्वर ने यरूशलेम में दो गवाहों की हत्या का उल्लेख भी किया है। संपूर्ण विश्व उनके पार्थिव शरीर को यरूशलेम के सड़कों पर पड़ा देखेगा। यदि उपग्रह टीवी ना हो तो ये कैसे संभव होगा? कुछ वर्ष पहले तो ये संभव नहीं था, परंतु आज ये संभव है। लिखा है कि मनुष्य के दाहिने हाथ पर या माथे पर चिन्ह होगा जिसके बिना किसी प्रकार का विनिमय संभव नहीं होगा। ये तभी संभव होगा जब संपूर्ण तंत्र कंप्यूटरकृत हो जाएगा। आज कंप्यूटर द्वारा हमारा बैंक विनिमय होता है। हम क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते ही हैं। इससे अगला चरण ये होगा कि क्रेडिट कार्ड के स्थान पर हाथ के या माथे के चिन्ह का प्रयोग होगा, जो क्रेडिट कार्ड से एक कदम आगे है। कंप्यूटर के स्कैनर्स आपके चिन्ह को पढ़कर आपकी सहायता करेंगे कि आप बाजार से सामान ले आए। इस प्रकार आप भविष्यवाणियों को पढ़कर कह सकते हैं कि आज जो कुछ संसार में हो रहा है वो तो परमेश्वर पहले ही कह चुका है, और आप अंतिम दिनों की घटनाओं को भी समझ लेंगे। इस प्रकार इन सब बातों द्वारा भविष्यवाणी की प्रामाणिकता सत्यता सिद्ध होती है। हम पूर्व अनुमानों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वे पूरे हो चुके हैं। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल का वास्तविक लेखक परमेश्वर है। यरमिया की भविष्यवाणियों के अंतिम भाग में प्रवेश करना अच्छा ही है, और हम जैसे यीशु ने कहा अपनी निगाहें ऊपर उठाते हैं, अपने सिरों को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उद्धार निकट है। हे पिता, हम तेरे भविष्यवाणी के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम इसराइल के आसपास के राष्ट्रों पर तेरे दंड के बारे में पढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि तेरा न्याय उचित था, क्योंकि उन्होंने तेरा त्याग किया था और देवी देवताओं की उपासना की थी, उन्होंने तुझसे विलग एक जीवन जीना चाहा था। और उसी प्रकार जब हम अपने आप को देखते हैं तो पाते हैं कि हम में तलछट जम गया है, क्योंकि हम सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं और हम में से दुर्गंध आती है। हम जानते हैं प्रभु कि हम तेरे दंड से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि तू धर्म का न्याय करता है। हे पिता, हमारी सहायता कर कि हम उन बातों से बचने के योग्य गिने जाएं जो आने वाली है, और उस दिन तेरे सामने खड़े होने योग्य ठहरे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और अच्छा समय प्रदान करे। आप परमेश्वर के प्रेम के ज्ञान में जीवन व्यतीत करें। आप परमेश्वर को होंठों से नहीं परंतु मन से अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। हां, परमेश्वर ही प्रथम हो, ये हमारे जीवन का सत्य बन जाए। याद कीजिए कि यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को क्या कहा था, तुम में पहले का सा प्रेम नहीं रहा, वो उत्साह अब नहीं रहा। तुम्हारे मन परमेश्वर की तथा आत्मा की बातों के प्रति मंद हो गए हैं। परमेश्वर आपको स्मरण दिलाए कि आप कहां से गिरे हैं, और आपको बचाकर उस पहले से प्रेम, समर्पण और जोश में लौटा लाए। प्रभु आपको फिर से अपने और पूर्ण एवं सिद्ध समर्पण में खींच लाए, यीशु के नाम में।